Red FM presents The Audio Film Project Season 2 with director Vikram Bhatt. Ise aankhein band karke dekho. Only on Red FM.
शालिनी की मौत इस तरह अपनी आंखों से देख लेने के बाद सिद्धार्थ इतना खौफ ज्यादा हो गया था कि इस वक्त वो बस खामोश जमीन पर बैठा था। इंस्पेक्टर कावेरी समेत पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने घर में चहलकदमी करना शुरू कर दी थी। वहीं इस शोर के बीच सिद्धार्थ था, जिसे सदमे की वजह से ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। रात होने लगी थी और वक्त जैसे बिजली की रफ्तार से बीत रहा था कि तभी कावेरी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। वो कह रही थी, सिद्धार्थ जरा बाहर आओगे, मुझे कुछ सवाल करने हैं तुमसे। ये सुनकर सिद्धार्थ बेसुध सा उठा और बाहर चला गया। बाहर आकर कावेरी ने गंभीर सी आवाज में कहा, सिद्धार्थ आई नो तुम थोड़े डिस्टर्ब्ड हो, मगर इस पर सिद्धार्थ ने पूछा, मगर क्या? कावेरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें स्टेशन आना होगा। सिद्धार्थ ने हैरानी के साथ कहा, मुझे क्यों आना होगा? जो तुम्हें जानना था वो मैं बता चुका हूं, अब इसके बाद और क्या? ये सुनकर कावेरी ने एक गंभीर आवाज में कहा, देखो ये एक प्रोसीजर का पार्ट है, फॉर्मेलिटी है। इसके पहले पूनम के ऊपर अटैक हुआ था, वो अब भी हॉस्पिटल में है, और अब शालिनी, दोनों ही तुम्हारे एनजीओ में काम करती थी और दोनों ही अटैक से पहले तुमसे मिले थे। यह सुनकर सिद्धार्थ की रगों में बहता हुआ खून जम गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम कहीं ये तो नहीं कह रही हो कि मैं सस्पेक्ट हूं? सिद्धार्थ के इस सवाल के जवाब में कावेरी कुछ बोल नहीं पाई। सिद्धार्थ ने अपनी किस्मत पर हंसते हुए कहा, कावेरी तुम मुझे पिछले 6 सालों से जानती हो और ये भी जानती हो कि मैं इस शहर की लड़कियों और औरतों के लिए कितनी लड़ाई लड़ चुका हूं और तुम मुझ पर शक कर रही हो। इस पर कावेरी ने नजरें फेरते हुए कहा, यार आई एम सॉरी बट इस सब में एक ही कड़ी कॉमन है और वो तुम हो सिद्धार्थ। देखो मेरी बात समझो, तुम आकर बस अपने ब्लड और बॉडी फ्लूइड का सैंपल दे दो बस, और मैं भी चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द इन सब चोचलों से निकल जाओ, इसलिए प्लीज मेरे लिए जस्ट डू इट फॉर मी। ये सुनकर सिद्धार्थ को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, मगर ना चाहते हुए भी उसने अपने सर को हामी में हिला दिया। इसी बीच रोशनी अपनी एड फर्म के ऑफिस के कैबिन में खामोश बैठी थी। कुछ तो था जो उसके मन में चल रहा था, जैसे वो अपने घर वापस जाना ही नहीं चाहती थी। बाकी के लोग ऑफिस से काफी देर पहले अपने घर जा चुके थे। ऑफिस की लाइट्स भी अब एक एक करके बंद होने लगी थी। ये सब होता देख रोशनी को महसूस हुआ कि अब उसे भी घर के लिए निकल जाना चाहिए। वो अपनी जगह से उठी ही थी कि तभी अचानक से वही दर्द उसके पेट में शुरू हो गया, और इस बार दर्द इतना तेज था कि रोशनी एक झटके के साथ जमीन पर गिर गई। दर्द इतना तेज था जैसे अब जान लेकर ही जाएगा। बड़ी मशक्कत के बाद रोशनी ने अपने पर्स से अपना फोन निकाला और 108 डायल कर दिया। फोन उठाने के बाद रोशनी एक दर्द भरी आवाज में बस इतना ही बोल पाई, क्रेजी माइंड मीडिया ऑफिस, प्लीज प्लीज जल्दी आइए, आई थिंक आई एम डाइंग। इतना बोलकर रोशनी बेहोश हो गई। रात के इस माहौल में शराब के नशे में मदहोश अंकुर एक बार में नाच रहा था। माहौल में नशा इस कदर घुल चुका था कि अंकुर के कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। हॉस्पिटल के बाद अक्सर अंकुर इसी तरह से अपनी शाम बिताता था। शहर में नया होने के कारण सारा शहर उसके लिए एक खुला मैदान था। इस शाम का जाम पीते हुए अंकुर को कुछ महसूस हुआ। यह उसका फोन ही था जो उसकी जेब में वाइब्रेट हो रहा था। उसने फोन निकाल कर देखा तो नंबर हॉस्पिटल का था। यह देखकर अंकुर तुरंत उस बार से बाहर आ गया। उसने फोन उठाया ही था कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, सर सर एक इमरजेंसी है, अभी हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज, पेशेंट काफी सीरियस है सर। अंकुर मना करना चाहता था क्योंकि इस वक्त वो अपने पूरे होश में नहीं था, मगर वो कुछ कह पाता उसके पहले ही दूसरी तरफ से फोन कट गया। अंकुर ने तुरंत एक कैब बुक की और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। करीब 20 मिनट में अंकुर हॉस्पिटल पहुंचा ही था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अंकुर का असिस्टेंट खड़ा हुआ था। तो उसने आते ही असिस्टेंट से कहा, बताओ राहुल क्या रिपोर्ट है। ये सुनकर राहुल ने कहा, सर एक ओवेरियन ऑपरेशन करना है, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा सर। ये सुनकर अंकुर सीधा चेंजिंग रूम पहुंचा और कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर में आ गया। और जैसे ही उसने अपने पेशेंट की शक्ल देखी तो सारा नशा एक झटके में उतर गया, क्योंकि ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि रोशनी ही थी। इस बीच असिस्टेंट ने सोनोग्राफी रिपोर्ट्स को अंकुर को देते हुए कहा, सर ये एक और प्रॉब्लम है। ये सुनकर अंकुर ने एक नज़र रिपोर्ट पर मारी ही थी कि उसकी हालत खराब हो गई। कुछ तो था जिसने अंकुर की रूह कंपा दी थी, मगर फिर कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, ऑपरेशन करना शुरू किया और करीब आधे घंटे तक लगातार ऑपरेशन करने के बाद उसने उस ओवरी को रोशनी के शरीर से अलग कर दिया। इतना करना हुआ ही था कि तभी अंकुर की नज़र एक और चीज पर पड़ी। उसने देखा कि रोशनी की दूसरी ओवरी पर भी इन्फेक्शन के निशान थे। ये देखकर उसने एक नज़र अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट ने बस इतना कहा, सर अब क्या करना है। इस पर अंकुर ने कहा, हमें किसी पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ये सुनकर पास खड़ी एक नर्स ने कहा, सर हॉस्पिटल में इस वक्त कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं है सर, और बुलाए भी तो करीब आधा घंटा लगेगा सर। ये सुनकर अंकुर ने एक नज़र रोशनी को देखा और फिर उसकी ECG पर अपनी निगाहें डाली। देखकर उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कहा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है और बॉडी को इतनी देर तक खुला नहीं छोड़ सकते, दूसरी ओवरी को भी निकालना होगा। इस पर असिस्टेंट ने परेशानी के साथ कहा, सर मगर बिना पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए हमें पता कैसे चलेगा कि ओवरी में सचमुच कोई इन्फेक्शन है, और अगर आपने दूसरी ओवरी भी निकाल दी तो सर। ये बोलते हुए असिस्टेंट कुछ देर के लिए खामोश हो गया। जो बात अंकुर का असिस्टेंट कहते कहते रुक गया था, वो बात अंकुर बहुत अच्छे से जानता था। दोनों ओवरीज निकाल देने के बाद रोशनी फिर कभी पहले जैसी नहीं रह सकेगी, वो बेचारी कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये अजीब सा धर्म संकट था जिसने अंकुर को घेर लिया था। अंकुर ने अपने ग्लव्स और मास्क उतारते हुए कहा, मैं आता हूँ, तुम पेशेंट को स्टेबल करो, और इतना कहकर वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर चला गया। इसी बीच सिद्धार्थ अपना स्पर्म सैंपल देके फॉरेंसिक्स के ऑफिस से बाहर ही आया था कि तभी उसका फोन बजा। उसे देखा कि ये फोन अंकुर का था। सिद्धार्थ ने फोन उठाया और वहां से अंकुर ने कहा, सिद्धार्थ मेरी बात ध्यान से सुनो, सीधे हॉस्पिटल आ जाओ, रोशनी को यहां लाया गया है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्यों क्या हुआ रोशनी को। इस पर अंकुर ने समझाते हुए कहा, देखो वो अब खतरे से बाहर है, मगर यार बस तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। इतना कहकर अंकुर ने फोन रख दिया। सिद्धार्थ ने तुरंत ही एक रिक्शा रोका और हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। रिक्शा में बैठे हुए सिद्धार्थ अपने मन में अलग अलग घटनाओं की कल्पना किए जा रहा था। वैसे भी इस वक्त तक रोशनी और उसके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इन्हीं ख्यालों में उलझे हुए वो आखिरकार करीब 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया। कुछ ही देर में काउंटर पर पूछते हुए सिद्धार्थ ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया। उसके कदम कभी तेज तो कभी धीमे हो रहे थे, जैसे वो जो सुनने वाला था वो एक खामोश खतरे की तरह दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा, जहां अंकुर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ ने आते ही अंकुर से पूछा, क्या हुआ मेरी रोशनी को? इस पर अंकुर ने उसे एक कोने में ले जाते हुए कहा, जो दर्द रोशनी को बार बार उठता था वो और कुछ नहीं बल्कि एक इन्फेक्शन था जो उसकी ओवरीज में बढ़ गया था, मगर फिक्र मत करो, मैंने उस ओवरी को निकाल दिया है। यह सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की राहत बरस गई कि तभी उसने देखा कि अंकुर ने अपनी बात ख़त्म नहीं की थी। कुछ था जो अब भी उसकी जुबान से बाहर आने को तैयार था। ये देखकर सिद्धार्थ ने कहा, मगर शायद कुछ और भी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। इस पर अंकुर ने कहा, मेरे असिस्टेंट ने जब प्रॉब्लम को जानने के लिए सोनोग्राफी का सहारा लिया तो देखा कि रोशनी 4 वीक्स प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर सिद्धार्थ के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रेग्नेंट थी मतलब? ये सुनकर अंकुर ने आंखें नीचे झुकाते हुए कहा, ओवरी के इन्फेक्शन से जो दर्द रोशनी को हुआ था उसके ट्रॉमा की वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं रहा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को लगा जैसे हजारों वोल्ट की बिजली उसके शरीर में उतर गई। उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था। वो बच्चा जिसके लिए रोशनी और सिद्धार्थ सालों से आस लगाए बैठे थे, आखिर इतनी जल्दी उनकी दुनिया से चला गया। मगर अंकुर ने अब तक सबसे बड़ा खतरा तो सिद्धार्थ के सामने रखा ही नहीं था। उसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो अब भी रोशनी की जान खतरे में है। पहली ओवरी निकालने के बाद जब मैंने देखा तो रोशनी की दूसरी ओवरी में भी इन्फेक्शन के निशान थे। अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो रोशनी की जान भी जा सकती है, मगर यदि उसे निकाल दिया तो। ये बोलकर अंकुर की आवाज कांप गई। सिद्धार्थ बस अपनी सांसें थामे बैठा था। अंकुर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मैंने दूसरी ओवरी भी निकाल दी तो रोशनी कभी मां नहीं बन पाएगी सिद्धार्थ। ये सुनना हुआ ही था कि लगा जैसे कई सारे जहरीले बिच्छू ने सिद्धार्थ के शरीर पर डंक मार दिया हो। उसने उम्मीद भरी आवाज में बोला, मां नहीं बन पाएगी? अंकुर तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, कोई और तरीका भी तो हो सकता है ना? ये सुनकर अंकुर ने ना में सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं किया जा सकता सिद्धार्थ, अब तुम ही बताओ, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, मगर यदि जल्दी ट्रीटमेंट नहीं की गई तो बड़ी मुश्किल हो सकती है मेरे यार। ये सुनकर सिद्धार्थ खामोश खड़ा था। एक तरफ रोशनी की जान थी और दूसरी तरफ बाप बनने का वो सुख जिसकी नाकाम कोशिश वो कब से किया जा रहा था। ये एक ऐसा मोड़ था जिंदगी का जहाँ एक तरफ जलते अंगार थे और दूसरी तरफ नुकीले कांटे। अब सब कुछ सिद्धार्थ के ही हाथ में था।
आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इन टू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे सुनिए रेड FM इंडिया एंड सारे लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड FM, बजाते रहो।